Murte, the personification reality of the Godhead, Adipati, maintains, Dhinan, the poor in heart, Vastra, a cloud, Eva, life, Vatsakam, unto the cat, Anugraha, bestow mercy, Kapara, eager, Asma, my Lord, O Supreme Lord, you are the supreme personified form of all benediction. Therefore, for one who abides in your devotional service with no other desire, worshiping your lotus feet is better than becoming king and lording it over a kingdom. That is the benediction of worshiping your lotus feet. To ignorant devotees like me, you are the causelessly merciful maintainer, just like a cow who takes care of a newly born calf by supplying milk and giving it protection from attack.
अनुवाद हे भगवान हे परमेश्वर आप त्रिवरों के परम साक्षात रूप हैं तथा जो बिना किसी कामना में आपकी भक्ति पर दृढ़ रहता है उसके लिए राजा बनना और राज्य करने की अपेक्षा आपके चरण कमलों की रज श्रेष्ठ कर आपके चरण कमलों की पूजा का यही वरदान है मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए आप अपने अहित की कृपा से पूर्ण परिपालक हैं जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाकर हमले से उसकी रक्षा करते हैं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी के प्रभुपाद द्वारा ध्रुव महाराज को अपनी भक्ति के दोष का पता था शुद्ध भक्ति का कोई भौतिक रूप नहीं होता और उस सकाम कर्मों अथवा मानसिक चिंतन द्वारा पूरी नहीं होती इसीलिए शुद्ध भक्ति अहेतुकी कहलाती है ध्रुव महाराज जानते थे कि वे भक्ति में भगवान की पूजा करने सुदृश्य आए हैं वे अपने पिता का राज्य चाहते थे ऐसा मिश्र भक्त कभी कभी भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता अतः वे भगवान की अहेतुकी कृपा के लिए कृतज्ञ थे भगवान इतने कृपालु हैं कि वे अविद्या के वशीभूत कृपा तथा भौतिक लाभ के इच्छुक भक्तों की समस्त कामनाओं को पूरा तो करते हैं साथ ही भक्त को सभी प्रकार से रक्षा भी करते हैं जिस प्रकार से गाय नवजात बछड़े को दूध पिलाती है भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान अपनी भक्ति में लगे हुए भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे बिना कठिनाई के इन तक पहुंच सके भक्तों को भक्ति के प्रति अत्यंत निष्ठावान होना चाहिए फिर चाहे भक्त में कितने ही दोष क्यों न हो श्री कृष्ण उसे मार्गदर्शन करते हुए भक्ति के उच्च पद तक पहुंचा देंगे ध्रुव महाराज ने यहाँ पर भगवान को पुरुषार्थ मुक्ति कहा है जिसका अर्थ है जीवन का चरम उद्देश्य सामान्य रूप से पुरुषार्थ का अर्थ है वर प्राप्त करने के लिए धर्म या भगवान की पूजा करना भौतिक वरदान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना इसलिए की जाती है जिससे इंद्रियों की तुष्टि हो सके और जब मनुष्य असंतुष्ट रहता है और लाभ प्रयत्न के बाद भी उसकी निवृत्ति नहीं होती तो मुक्ति की कामना करता है ये कार्य सामान्यतः पुरुषार्थ कहलाते हैं जो वास्तविक उद्देश्य तो भगवान को समझना है यह पंचम पुरुषार्थ कहलाता है इसीलिए भगवान चैतन्य ने शिक्षा दी है कि मनुष्य को भगवान से संपत्ति ख्याति या सुपत्नी जैसे वरदान नहीं मांगने चाहिए उसे तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहने की प्रार्थना करनी चाहिए ध्रुव महाराज अपनी भौतिक इच्छाओं से अवगत थे अतः वो भगवान का संरक्षण चाह रहे थे जिससे भौतिक इच्छाओं के कारण भक्ति में भक्ति से विपत न हो सके
ॐ अज्ञानचिन्तनस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाया
my Lord, O Supreme Lord, you are the supreme personified form of all benediction. Therefore, for one who abides in your devotional service with no other desire, worshipping your lotus feet is better than becoming king and lording it over a kingdom. That is the benediction of worshipping your lotus feet. To ignorant devotees like me, you are the causelessly merciful maintainer, just like a cow who takes care of the newly born calf by supplying milk and giving it protection from attack. Today, we are reading Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 9, entitled Dhruva Maharaj Returns Home, Text 17.
आज श्रीमद् भागवत से पढ़ रहे चौथे स्कंध का नौ अध्याय है। इस शीर्षक है ध्रुव मार्ग का धर्म लौटना और श्लोक नंबर 17 है।
I am greatly honored to be with all of you today. Having the privilege of serving you by giving the first Srimad Bhagavatam class in Sri Radha Govind today's beautiful retreat.
सौभाग्य है कि राधा गोविंद के सुंदर नए मंदिर में पहला श्रीमद् भागवत क्लास मुझे देने का अवसर मिल रहा है। शुरुआत करने से पहले जो सारे भक्त जिन्होंने मंदिर निर्माण में सहायता की गुरुदेव से धन्यवाद देना चाहूंगा।
The body is also compared to a temple.
ये शरीर की तुलना भी एक मंदिर से की जाती है।
Because ईश्वर सार्वभौम कृतेश्वरी Because the Supreme Lord as the Paramatma resides within the heart.
क्योंकि भगवान यह परमात्मा के स्वरूप नित्य के हृदय में वास करते हैं।
In order to help people to understand and realize this supreme blessing that we all have, great acharyas or spiritual teachers have built temples. Where hundreds or thousands of people could come together to inspire one another to understand this most sacred truth that God is within our hearts.
ये बहुत पवित्र सत्य है कि भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। इस बात का लोगों को जानकारी देने के लिए आचार्यों ने जो है मंदिरों के निर्माण किए।
This body temple. It's for one jiva, for one spirit soul. These beautiful temples are for thousands and thousands of spiritual souls to come together.
ये शरीर का जो मंदिर है वो एक जीवात्मा के लिए है, लेकिन इस प्रकार के जो मंदिर हैं ये हजारों हजारों जीवात्माओं के लिए है जो एकत्र हो सके।
The wealth of the temple is not in its size or in the quality of wood or stone or metal. It's in the quality of the hearts of the people who come.
जो मंदिर की सुंदरता है वो उसके पत्थर में या उसके अलंकार में नहीं है, लेकिन उसमें की जो भक्त आ रहे हैं उनके गुणों में।
The original Radha Govinda temple in Vrindavan. Shri Rupa Goswami, he was the inspiration.
Mo
राधा गोविंद का मंदिर वृंदावन बनाया गया इसकी मूल प्रेरणा है श्री रूप गोस्वामी से.
For many years, he lived under a tree.
कई वर्षों तक वो एक वृक्ष के नीचे निवास करते हैं.
Previously, he was literally a millionaire.
उसके पहले वो करोड़पति थे.
He was young, handsome, strong, intellectual, and had tremendous wealth.
पहले बहुत सुंदर थे, संपत्तिशील थे और बहुत सारे पद था उनके पास.
Even the king and all the citizens would do practically whatever he advised.
और राजा भी जो है वही करता था जो रूप गोस्वामी सलाह देते थे.
He and his brother Sanatan, they gave all of that up to sleep on the hard, cold ground in the winter and the summer, sleeping under a different tree every night in the forest of the Dharam.
और उनके भाई सनातन जो है उन्होंने सब ऐसा त्याग दिया और पेड़ों के नीचे रहते सर्दी में गर्मी में वृंदावन धाम
में.
और वो ये मानते हैं कि यही सबसे बड़ी संपत्ति.
See, the wealth was not his magnificent palace, and the wealth was not sleeping under trees on the ground. The wealth is in loving devotional service to the Lord.
संपत्ति जो है महलों में रहना या पेड़ों में रहना नहीं है. संपत्ति है कि भगवान की सेवा करना.
I remember when I was younger, sleeping under trees on the ground on riverbanks in Vrindavan.
मैं पहले वृंदावन में जो है मुझे याद आ रहा है अलग अलग पेड़ों के नीचे रहता था.
For whatever reasons of the Lord, I was sent away to the USA.
और भगवान की इच्छा अनुसार मुझे USA भेजा गया था.
And I was in a community where there was about 110-year-old farmhouse that all the devotees lived in.
और मैं वहाँ एक बिल्डिंग में रहता था जो 110 साल पुराना था जिसमें कई भक्त रहते थे.
Very cold winters.
बहुत ठंडी होती है.
Now remember, I decided to leave that place.
और मुझे याद आ रहा है कि मैंने निश्चय किया उस स्थान को मैं छोड़
दूँ. And I told the leader that I'm going.
और मैंने उस समय के नेता थे उससे कहा कि मैं जा रहा हूँ.
He said, why are you going?
मैंने कहा आप क्यों जा रहे हैं.
So there's too much sense gratification and luxury.
मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इंद्र तृप्ति.
He said nobody ever said that before.
मैंने बात किया कि ऐसा तो पहले किसी ने नहीं कहा.
What is the luxury?
क्या देखो.
He said we're all sleeping inside a nice house.
मैंने कहा हम सब एक घर में रह रहे हैं.
He said there's 60-70 people crowded in an old farmhouse, sleeping on the floor, and you're saying this is luxury?
जो आप देख कि 60-70 लोग एक ही घर में रह रहे हैं और आप बोल रहे हैं ये बहुत बड़ा वैभवशाली है.
When I was in Vrindavan, I was sleeping under trees.
मैंने बताया कि वृंदावन में वृक्ष के नीचे निवास करता
हूँ. And here you give everyone food.
और यहाँ पर आप हरे को भोजन देते हैं.
There I have to go out and beg for food. This is too much luxury.
वहाँ पे मुझे मजदूरी करना पड़ता था इसलिए ये बहुत वैभवशाली. मेरे से क्रोधित हो गए.
श्रील
प्रभुपाद जी के वचन बताए.
श्रील प्रभुपाद और गुरु देव टोल्ड अस दैट वी शुड ओनली बी अटैच्ड टू सर्विंग कृष्ण. वी शुड नॉट बी अटैच्ड टू एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड.
रूपा जी ने बताया कि हमें सिर्फ कृष्ण सेवा से आसक्त होना चाहिए. दुनिया की किसी भी चीज से आसक्त नहीं होना चाहिए.
If we're living in a palace, we should not be attached to our palace.
अगर महल में रह भी रहे हो तो महल से आसक्त नहीं होना
चाहिए.
अगर हम पेड़ के नीचे रह रहे हो तो पेड़ से आसक्त नहीं होना
चाहिए. This is your maya. You are too attached to your trees.
ये आपकी माया है कि आप पेड़ों के प्रति बहुत आसक्त.
So I stayed.
इसलिए मैं वहीं पर रह गया.
Goswami left his beautiful, beautiful palace to sleep under trees.
Rupa Goswami apne sare sundar mahal ko chhod kar pedon ke niche rehne lage.
So that he could engage 100% of all of his energies in the loving service of the Lord.
Jisse ki woh 100% apni sari shaktiyon ko Bhagwan ki seva mein laga sake.
Lord Chaitanya gave him a mission there in Vrindavan.
Bhagwan Chaitanya Mahaprabhu unko Vrindavan mein seva di thi.
To exemplify the highest standards of devotion and renunciation in his life.
अपने जीवन में एक उदाहरण देना कैसे भक्ति और वैराग्य का जीवन बिताना है.
To write literature to establish that the ultimate essence of all the scriptures, particularly the Vedas, is unmotivated, uninterrupted love and devotion to the Supreme Lord Krishna.
शास्त्रों के द्वारा सिद्ध करना कि जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अहेतुकी अप्रतिहेतुकी भक्ति ये जीवन का लक्ष्य है.
To discover and reveal to the world the holy places within the pilgrimage site of Vrindavan, where Krishna performed his pastime.
वृंदावन में जहाँ कृष्ण ने लीला की वहाँ पे वो तीर्थों को प्रकट करना और लोगों को बतलाना और फिर मंदिरों का निर्माण करना.
To show people how they could come together like a spiritual hospital, as Gopal Krishna Maharaj was saying, to heal the disease of ignorance.
जैसे कल गोपाल कृष्ण महाराज बता रहे थे कि एक आध्यात्मिक अस्पताल है जो कि अज्ञान की बीमारी को दूर करने वाला है.
And particularly Lord Chaitanya Mahaprabhu told Rupa Goswami to discover the ancient deity of Govinda.
और विशेष करके उनको उसने बताया कि गोविंद ने के विग्रह को खोज के निकाले और उनके लिए मंदिर निर्माण करें.
गोविंद देव वाज ओरिजिनली इंस्टॉल्ड बाय कृष्णस ग्रेट ग्रैंडसन बज्रनाभ.
मूलतः गोविंद देव की स्थापना कृष्ण के पुत्र के पुत्र के पुत्र बज्रनाभ ने स्थापना की. रूपो गोस्वामी के समय ये बात जो 4,500 वर्ष पुरानी थी.
For years he lived in Vrindavan and he did everything the Lord asked him to do in such an incredible way.
कई वर्ष तक वो वृंदावन रहे और उन्होंने वो सब कार्य किए जो उनको भगवान ने बताया था बहुत ही अचिंत्य तरीके से.
But he could not find Govind.
वे गोविंद देव को नहीं खोज पाए.
Instead of being proud of what he had accomplished, he was feeling very, sad that he could not carry out this work.
बजाय इसके अभिमान होना जो करने पर उनको एक दुख लग रहा था कि मैं ये चीज को नहीं कर पाया.
One day he was sitting under a copper birch tree on the bank of the Ganga River.
एक दिन वो यमुना के किनारे एक कपूर वृक्ष के नीचे बैठे थे.
A little boy approached them.
और एक छोटा बालक उनके पास में पहुंचा.
The boy said, "Oh, Swami ji, Baba ji, you look very sad. What is it that is in your heart?"
वो बालक बोला कि हे स्वामी जी, हे बाबा जी, आप बहुत दुखी लग रहे हो, क्या कारण है?
He said, "I have been looking for Govinda for so long, but there's no trace of where he could be."
उन्होंने जवाब दिया कि मैं गोविंद के लिए बहुत समय से खोज रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर है.
Throughout the Brajbhumi area, I have searched people's homes, temples, forests.
मैंने जो है पूरे ब्रज में जो है घर और जंगल सब जगह पर खोजा है.
मैं
खोज नहीं पाया और भगवान चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि मैं तो खोज के दुनिया को दर्शन दिलाऊं. छोटा बालक मुस्कुराने लगा.
I know where Govind is.
बाबा जी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कहाँ पर गोविंद देव है।
गोस्वामी जी,
गोस्वामी जी मेरे साथ चलो।
गोस्वामी का कहना है,
गुरु को गोस्वामी को हाथ पकड़ कर लेकर गए। उनको एक टीला के पास ले गए। और वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर गाय अकेली खड़ी थी और पास में कोई गजरा भी नहीं था।
मिल्क, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मिल्क वाज पोरिंग फ्रॉम द काउज अदर रनिंग टू द ग्राउंड।
और गाय के थनों से बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में दूध जो है जमीन में गिर रहा था।
The little boy said, "That's a surrogate cow, and she comes every day to give her milk to Govind."
उन्होंने बताया कि ये जो सुरभि गाय है, ये रोज आती है भगवान गोविंद देव को अपना दूध प्रदान करने के लिए।
Just take a little dirt and you will find Govind underground, right where the cows offering milk.
यहाँ पर गाय अपना दूध अर्पण कर रहे हैं, वहां छोड़ के खुदाई करो और आपको गोविंद देव के दर्शन हो
जाएंगे।
और वो छोटा बालक अदृश्य हो गया।
उन्होंने
समझाया कि ये बालक स्वयं गोविंद थे। कोई छोटे बालक के रूप में दिखाने की नहीं, वो कहां पर है।
He took me by the hand, and I didn't even recognize him. I didn't offer him any respect. I didn't offer him anything. I considered him just a little boy.
वो मुझे हाथ पकड़े दे गए और मैं उनको आदर नहीं दे पाया और मैं उनको साधारण बालक ही समझ रहा था।
And then he fainted.
और वो बेहोश हो गए।
When he came, when he got up, he was thinking, whatever may have happened, he has given me a service.
उठने के बाद सोचने लगे, जो भी हो गया सो हो गया, लेकिन भगवान ने मुझे सेवा दी है।
गोस्वामी brought together some of the Brijavasis and said, "Please dig here. Govinda Dev is underneath the ground."
उनको गोस्वामी ने बैवास के कतर किया और बताया, खुदाई करो, उसके नीचे गोविंद देव है।
They were all so excited because everyone knew about Govinda Dev, the prominent deity of that area that had been lost for generations.
सब बहुत उत्साही होंगे क्योंकि सबने सुना था गोविंद देव के बारे में, जो कि बहुत समय से अप्रकट हो चुका था।
They took their spades and they dug, and there they found beneath the ground that beautiful form. They all gazed upon him with tears of love in their eyes. He was more beautiful than millions and millions of Kandarvas.
जब उन्होंने खुदाई करने के बाद विग्रह को निकाला तो देखा है बहुत सुंदर विग्रह थे और ये करोड़ों करोड़ों कामदेव से ज्यादा मोहक थे।
They built a small little place for him and Rupa Goswami began his worship.
एक छोटी सी जगह बनाई और रूप गोस्वामी ने उनकी पूजा आरंभ की।
रूप गोस्वामी
भौतिक रूप से रूप गोस्वामी के पास कुछ भी नहीं था।
So how was he going to do?
तो मंदिर का निर्माण कैसे करते?
He was happy living under a tree.
वो तो पेड़ के नीचे निवास करने में ही सुखी थे।
Krishna should have better than a tree.
लेकिन कृष्ण को पेड़ से ज्यादा अच्छी कोई जगह देनी चाहिए।
One time Srila Prabhupada said to us.
एक बार श्री प्रभुपाद ने हमसे कहा।
He said, for ourselves, we don't need these temples.
उन्होंने कहा, हमारे लिए तो मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है।
We are happy just sitting under a tree chanting Hare Krishna.
हम तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर हरे कृष्ण जप करके सुखी रह सकते हैं।
So the devotee is happy with some nice association, with chanting Hare Krishna and with a little prasad.
एक भक्त जो है साधु संग और हरे कृष्ण जप और थोड़े प्रसाद से ही संतुष्ट हो जाते हैं।
We don't need anything more than that.
हमें इससे ज्यादा कोई आवश्यकता है ही नहीं।
If we're not happy with those simple things, we cannot be happy with whatever else we have.
अगर हम इन चीजों से संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर चाहे कितनी चीजें प्राप्त कर ले हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे।
if we're happy with those simple things, just associating with devotees, chanting Hare Krishna, and having a little prasad, if we're happy with that, then we can be happy whether we're living in a magnificent home or whether we're sleeping in a crowded ashram or under a tree.
अगर हम इससे सुखी हैं तो चाहे हम पेड़ के नीचे रहें या बहुत आश्रम में बहुत भक्तों के साथ रहें हम सुखी रहेंगे किसी भी अवस्था
में
और ये नदी के किनारे या राजा के रूप
में
सच्ची प्रसन्नता जो है वो इन सरल चीजों में प्रभुपाद जी बोले अगर वृक्ष के नीचे बैठ कर हम जप करेंगे तो भगवान का संदेश सुनने आएगा कौन और भक्तों के समूह में एकत्र होने के लिए क्या सुविधा रहेगी इसीलिए हम मंदिर बनाते हैं जिससे हम लोगों को आकर्षित कर सके बता सके कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है भक्ति
One general from the emperor, Akbar, I believe it was at the time, he came forward, several others, because they saw Rupa Goswami's devotion. And due to his devotion, their love for Govinda
awakened. वो रूपो गोस्वामी को देखकर वो सामने आए और उनकी भक्ति भी जागृत हुई
So they built the most magnificent temple in all of northern India.
और पूरे उत्तर भारत में सबसे सुंदर मंदिर उन्होंने निर्माण किया
श्री श्री गौर गोविंद temple. Took many years to build. It's all beautiful hand carved red stone, gigantic.
बहुत ही सुंदर लाल पत्थर का बना हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर है विशाल
Can you imagine a temple like that? It's still there today, but now it's about 450 years old. And it was the Mughal conqueror Aurangzeb came and destroyed much of it.
और वो मंदिर अभी भी है, लेकिन औरंगजेब ने उसके कई भाग जो है नष्ट कर दिए.
But when it was new, it was just in a lonely forest.
जब वो नया था तो बिल्कुल वो जंगल के बीच में.
During Digri, I was told this used to be kind of a lonely field when we started, but now it's not lonely anymore.
पहले इसे मुझे बताया गया कि ये निर्जन जंगल की तरह था, लेकिन अब ये भी जंगल नहीं रहा.
In the last few years, so many buildings have been all over the place.
आसपास कुछ कुछ वर्ष में बहुत सारे इमारतों का निर्माण हुआ है
I was told there wasn't even a road to get here when we started the construction just a couple years ago.
दो साल पहले जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो उस समय रोड भी नहीं था यहाँ
पर Rupa Goswami from the beginning to the end, Vrindavan was just a lonely forest.
Rupa Goswami के लिए शुरू से अंत तक वृंदावन एक निर्जन वन था.
And after the temple was built, With all of its magnificence, Govinda Dev was installed and worshipped there with all loving devotion.
और फिर गोविंद देव की स्थापना की गई और बड़े प्रेम के साथ उनकी सेवा की गई.
Rupa Goswami continued to live under the same old trees that he did on the banks of the river.
और वो स्वयं यमुना नदी के किनारे पेड़ के नीचे ही निवास करने लगे.
He didn't build it for him, he built it for us.
उन्होंने अपने आप के लिए नहीं बनाया मंदिर वो हमारे लिए बनाया और वो अपने लिए से मधुकरी करते थे और भगवान के लिए बहुत ऐश्वर्यशाली भोजन अर्पण करते
The wealth of that temple is not in the stone. The wealth is in the bhakti, the devotion that Rupa Goswami gave to people when they came.
जब धन संपत्ति जो है वो कोई पत्थर में नहीं, धन संपत्ति जो भक्ति रूप गोस्वामी उन लोगों को देते जो उनसे मिलने आते
हैं।
लोग संतुष्ट हो सके किसी भी स्थिति में जब वो भगवान के प्रति भक्ति में ही संतुष्ट रह सके।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यौमे भक्त प्रयास Krishna tells in Gita that whether you offer me a leaf of flower or water, if it is offered with devotion, I accept it and I'm happy.
भगवान भगवती ने बताते हैं अगर कोई मेरे प्रेम से एक पत्ता या जल या फल या फूल अर्पण करता है तो मैं स्वीकार करता हूँ।
श्रीमद् भागवत explains that the perfection of whatever we do in our life is sansidhir hari dosha. That Lord Hari is pleased by our devotion.
श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि हमारे जो भी सारे प्रयास की पूर्णता इसमें है कि भगवान हरि जो है उसमें संतुष्ट हो जाए।
Anyone can find a leaf, a flower, a little water.
और कोई व्यक्ति एक पत्ता या फल या जल फूल भगवान को दे सकता है।
And if it is offered with sincere devotion, Krishna is happy.
और अगर सच्चे भक्ति से किया जाए तो कृष्ण प्रसन्न।
If the root of the tree is nourished, then every part of the tree is nourished as well.
अगर पेड़ के जल में जल दिया जाए तो हर एक भाग को जल प्राप्त हो जाता है।
When our happiness is in Krishna's happiness, we can forever be happy.
अगर हमारी प्रसन्नता कृष्ण की प्रसन्नता में है तो हम हमेशा प्रसन्न रह सकते हैं।
Because whatever our age, whatever our health, whatever our economy, whatever happens in this uncertain world, we can always offer Krishna something.
हम किसी भी स्थिति में हो इस भौतिक दुनिया में हम कृष्ण को कुछ तो अर्पण कर ही सकते हैं और जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तो हम सुखी हो सकते
हैं।
और वही संदेश है जो कि आज के श्लोक में बताया जा रहा है।
People in this world are mad after wealth.
इस दुनिया में लोग संपत्ति के पीछे पागल हैं।
What is real wealth?
लेकिन सच्ची संपत्ति क्या है?
Some people consider wealth, power, prestige, influence.
कुछ लोग मानते हैं कि कुछ शक्ति प्राप्त करना, प्रभाव होना दूसरे के ऊपर,
wealth and property,
या धन या संपत्ति प्राप्त करना।
Little Dhruva was 5 years old.
छोटे बालक ध्रुव 5 वर्ष के थे।
His father was the king.
और उनके पिता जो हैं वो राजा थे।
At that time he was the king of the world.
वो पूरी दुनिया के राजा थे।
Not the king of Negri.
अरे Negri के नहीं।
Or India.
या भारत के नहीं।
King of the world.
पूरे दुनिया के राजा।
His father was sitting on the throne.
उनके पिताजी राजगद्दी पे विराजमान थे।
Dhruva's stepbrother, Uttama, was sitting on his father's lap.
और उनके सौतेले भाई उत्तम जो है पिता की गोद में बैठे थे।
Little Dhruva was so eager to sit beside his brother on his father's lap.
ध्रुव की बहुत इच्छा थी कि मैं भी पिता की गोद में अपने भाई के साथ बैठूं।
This childlike innocence, he had such anticipation to be there with his father.
और उनके बच्चे की समान मासूमता के कारण उनकी इच्छा थी कि हम पिताजी के पास में बैठूं।
Ran up to the throne and started climbing up onto his father's leg.
वो दौड़ते हुए गए और वो अपने पिता की गोद में चढ़ने लगे।
Suddenly, the stepmother of Dhruva, Sarushi, she harshly
सौतेली माता जो है सुरुचि वो बहुत कठोर शब्दों में उनको डांटने लगे।
You have no right to sit on the throne with your father because you are not born of my womb.
कहा कि तुमको अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ।
यू आर बोर्न ऑफ एन इनफीरियर वुमन।
तुम्हारा जन्म एक निम्न श्रेणी की स्त्री से हुआ है।
Therefore, if you want to sit on this throne, you must worship the Supreme Lord and ask for the benediction that you will be born from my womb in your next life.
आपको जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और ये वरदान मांगना चाहिए कि तुम अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लोगे।
The words of his stepmother were like a thunderbolt that hurt his heart so deeply.
उनके माता के शब्द वज्र के समान थे जिन्होंने उनके हृदय को बहुत ठेस पहुंचाई।
There was nothing he could do to defend himself.
वो कुछ कर नहीं पाए अपने आप को बचाने के लिए।
Helpless, he turned to his father with helpless eyes. Please,
अपने निस्सहाय आंखों से वो अपने पिता की तरफ मुड़े, कृपया मेरी मदद करो।
Desperately, he looked upon his father.
बहुत आतुरता से अपने पिता की तरफ देखने लगे।
But the king, he did not want to displease Suruchi, his wife.
लेकिन राजा अपनी पत्नी सुरुचि को नाराज नहीं करना चाहते थे।
He turned away from Dhruva and said nothing.
उन्होंने ध्रुव की तरफ ध्यान नहीं दिया और कुछ कहा नहीं।
Dhruva was mortified.
ध्रुव को बहुत पीड़ा हुई।
He told he felt totally betrayed by the one person he trusted in this world to protect him.
उनको बहुत धोखा लगा उस व्यक्ति से जिसके जो उनकी रक्षा कर सकता था।
He began to cry.
और रोने लगे।
His lips trembled.
वो कांपने लगे।
He was both heartbroken.
उनका हृदय टूट गया और बहुत क्रोधित थे।
He ran from the court of his father.
अपने पिता के दरबार से भाग गए।
To his mother, Suniti.
अपनी माता सुनीति के पास गए।
By this time, Suniti had heard everything that had happened.
अब तक सुनीति को पता चल गया था कि क्या हुआ है।
And she spoke to little Dhruva.
उन्होंने बालक ध्रुव से कहा।
Seeing her tiny child's anguish, her beautiful face wilted like a lotus flower in the cold night.
अपने पुत्र की स्थिति को देखकर उनका मुख जो है बिल्कुल सूख गया कमल की फूल की तरह।
Or like a lotus flower that's been scorched by the raging summer sun.
ऐसे कमल का फूल जो कि सूर्य के किरणों से बहुत गर्मी के कारण सूख गया।
She said to Dhruva, "There's nothing I can do for you because your father loves this other woman more than me."
ने कहा ध्रुव, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पिता जो है ये दूसरी स्त्री से ज्यादा प्रेम करते हैं।
But what your stepmother said is right. If you worship the Supreme Lord, he can fulfill all your desires.
लेकिन ये बात सत्य है कि अगर तुम भगवान की आराधना करोगे तो वो तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं।
Where to find the Supreme Lord, Dhruva inquired.
ध्रुव ने पूछा कि भगवान को मैं कहाँ खोज सकता हूँ।
Great yogis and sages, they go to the forest to search for him.
बड़े बड़े योगी और ऋषि जो है जंगल में जाते हैं भगवान की खोज में।
Little Dhruva immediately left home and ran into the forest.
बालक ध्रुव तुरंत घर छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े।
His mother was shocked. She didn't believe he would do that.
उनकी माता को आश्चर्य लगा। उनको विश्वास नहीं था कि बालक इस तरह से करेगा।
He went so deep into the forest so quickly that nobody could find him anywhere.
इतनी तेजी से चले गए जंगल में कि कोई व्यक्ति को कहीं पर खोज नहीं पाया।
When the king heard what happened, he realized what he had done to his son. His heart was broken. His mind was crushed with grief.
जब राजा ने सुना तो उनका मन भी बहुत दुखी हो गया, दुख पीड़ित हो गया।
That's the way the world is. One little mistake could create such havoc in a person's life.
ये दुनिया का स्वभाव है कि एक छोटी सी गलती जो है पूरे किसी के जीवन में बिल्कुल एक उपद्रव पैदा कर दे।
The king Uttanapada one moment of just not saying and doing the right thing completely destroyed his son's life.
एक छोटी सी गलती की राजा ने कुछ कहा नहीं उसके कारण उसके पुत्र का पूरा जीवन नष्ट हो गया.
And now there was nothing he could do about it because his son was gone.
और अब वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके बेटे चले गए.
As far as the king was concerned, there was no possibility of him surviving.
यहाँ तक राजा का सवाल है उनको लग रहा था कि उनके बचने की कोई संभावना नहीं है.
There were lions and tigers and scorpions and venomous snakes in the forest.
क्योंकि जंगल में शेर और चीते और बिच्छू और सर्प रहते हैं.
There's no food.
वहाँ कोई भोजन नहीं होता.
There's no houses.
और ना ही कोई घर होते.
How is a five-year-old child going to survive?
एक पांच वर्ष का बालक कैसे जीवित रह सकता है?
Because of my foolishness, because of one little attachment and making a moment wrong decision due to that attachment, I have become the cause of the suffering and the death of my own son.
मेरी एक छोटी सी गलती के कारण और कुछ नहीं कहने के कारण मैं अपने पुत्र के दुख और मृत्यु का कारण बन गया हूँ.
I hurt his heart so much that he left his home forever.
मैंने तुरंत को इतनी पीड़ा पहुंचाई कि हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चले गए.
But there was nothing he could do about it.
लेकिन उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे थे.
ध्रुव was gone.
ध्रुव चले गए थे.
That's the way the world is.
ये दुनिया का स्वभाव है.
One mistake could create such havoc.
एक गलती जो है इतना उपद्रव पैदा कर सकती है.
How responsible we have to be and how serious about the responsibilities we have in this life.
हमें बहुत जिम्मेदार बनना चाहिए और उन जिम्मेदारियों के बारे में बहुत गंभीर रहना चाहिए.
The ध्रुव went deeper and deeper and deeper into that forest.
वो बालक ध्रुव जंगल में गहराई गहराई में प्रवेश करने लगा.
He was yearning to find God.
वो भगवान की खोज के लिए तरस रहे थे.
Why? Because he wanted to get revenge on his father and stepmother.
क्योंकि अपने पिता और अपनी सौतेली माँ का बदला लेना चाहते थे.
He was determined to find God and to ask for a kingdom greater than his father's, greater than his grandfather's, that he could rule over, just to show them.
वो चाहते थे कि मैं ऐसा राज्य प्राप्त करूँ जो मेरे पिता और दादा से भी ऊंचा हो, जिससे मैं इनको दिखा सकूँ.
He just said, by the mercy of Krishna, one gets Guru, and by the mercy of Guru, one gets Krishna.
ऐसा बताया था कि कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और फिर गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं.
Finding a guru is not by chance or accident.
गुरु को प्राप्त करना जो है ये कोई बिल्कुल चांस से नहीं होता.
When a person is sincere about spiritual life, Krishna within the heart orchestrates material nature to put us in a frame of mind and puts us in the association of his own devotees.
जब कोई व्यक्ति भक्ति के लिए गंभीर होता है तो कृष्ण भौतिक स्थिति को ऐसा व्यवस्था करते हैं कि हम वो भक्त के संपर्क में आ पाते हैं.
So the great guru Narada Muni happened to be sent by the Lord into that lonely, dark forest and approached Dhruva. They were the only two human beings anywhere around.
महान संत जो है नारद मुनि भगवान की व्यवस्था से उस समय जंगल में ध्रुव महाराज को मिले और बस वे दो ही व्यक्ति थे उस इलाके में.
You see, if we are sincere, there is no material impediment.
अगर हम
for our spiritual progress, the Lord arranges.
अगर हम गंभीर हैं तो कोई भौतिक बाधा नहीं आ सकती. आध्यात्मिक जीवन में भगवान इंतजाम करते हैं इस तरह की.
Narada Muni tested Dhruva. You're just a small boy. Don't take these things so seriously. Just go home.
Narada Muni ने पहले ध्रुव की परीक्षा दी कि आप छोटे बालक को इन चीजों को गंभीरता से मत लो. आप वापस घर चले जाओ.
Your age, you should be playing and studying. You shouldn't take these things so serious.
आपकी उम्र में आपको खेलना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, अब इन सब चीजों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए.
Success in life is those whom you are in a superior position to, that you treat them with great compassion and try to uplift them.
जीवन की सफलता इसमें है कि अगर हम किसी से श्रेष्ठ स्थिति में हैं, तो उन पर दया करके उनको ऊपर की ओर उठाएं।
People who are, you are equal to, you make intimate friendships with them.
और जो आपके बराबरी के हैं, उनके साथ घनिष्ठ मित्रता स्थापना करें।
And people who are in a superior position to you, you are happy to see their success and you want to serve them and to learn from them.
और जो आपसे श्रेष्ठ हैं, आप उनकी सेवा करें और उनसे ज्ञान ग्रहण करें।
This is just the opposite of material human tendency.
ये स्वाभाविक मानव प्रवृत्ति के बिल्कुल विरोध में है।
When we are superior to someone, we become arrogant.
जब हम किसी श्रेष्ठ होते हैं, तो हम अभिमानी बन जाते हैं।
And want to stay in a superior position.
और हम उनसे अच्छी स्थिति में हमेशा रहना चाहते हैं।
People who are equals, we want to compete with them to take a higher position.
जो हमारे बराबर के हैं, हम उनसे स्पर्धा करना चाहते हैं या उनसे ऊंची स्थिति चाहते हैं।
And people who are above us,
जो हमारे से ऊपर हैं,
we become envious of them.
हम उनके प्रति ईर्ष्या करने लगते हैं।
Or we become depressed because we're not as good as them.
या हम उनको निराश हो जाते हैं कि हम उनकी तरह नहीं हैं।
This is the mood of wanting to be an enjoyer.
ये भाव जो है भोक्ता बनने की है।
Therefore, there is no satisfaction of the heart in any of these relationships.
इतने इन संबंधों में किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं होती।
But in the mood of a servant, there can be true love.
लेकिन सेवक की भावना में सच्चा प्रेम हो सकता है।
To be like a compassionate father or mother to help uplift people who are in a lesser position, to make intimate, loving relationships, to share with people who are equal, and to honor, respect, and feel happy about people in a superior position, and try to learn from them with gratitude.
जो हमारे निम्न श्रेणी में उनको दयापूर्वक मदद करना, जो बराबर के उनसे मित्रता रखना, और जो श्रेष्ठ हैं उनको बड़े आदर के साथ व्यवहार करना और उनसे सीखने का प्रयास करना।
So follow these principles, Dhruva, and go home.
ध्रुव, तुम इस सिद्धांत का पालन करो और घर जाओ।
Dhruva Maharaj said, I know what you're saying is right, but nothing of your words can sit in my heart because I am so angry.
Dhruva Maharaj बोले, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं इतना क्रोधित हूं कि आपके शब्द मेरे हृदय में नहीं प्रवेश कर रहे।
I must have a kingdom greater than my father or grandfather.
मुझे ऐसा राज्य प्राप्त करना है जो मेरे पिता और दादा से भी ज्यादा बड़ा है।
And I need to find God.
और उसके लिए मुझे भगवान को खोजना है।
नारद मुनि said,
नारद मुनि बोले, अच्छा है।
Go to the forest of Madhuvan.
मधुवन में जाइए।
Take your residence on the bank of the river Yamuna.
यमुना के तट पे आप कुटिया निर्माण करिए।
There's nothing there. As far as man-made things.
वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं।
With the mud and with stones, you can make immortality of Krishna.
मिट्टी से और पत्थर से भगवान कृष्ण की एक मूर्ति बनाई।
And offer him herbs and fruits and flowers for devotion. And meditate on this, on the beautiful form of the Lord. And Narada Muni explained the eternal divine form of the Lord for Dhruva to meditate upon within his heart.
नारद मुनि ने तो समझाया कि भगवान का शाश्वत रूप जो हृदय में है उसके ऊपर ध्यान करो। नारद मुनि ने वर्णन करके
बताया
और इस मंत्र का जप करो।
सेक्रेट मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Thank you.
probably benefit just doing that for the rest of the class more than my speaking. He's asked to speak. Dhruva took those words so seriously.
Dhruva Maharaj ne shabdon ko bahut gambhirta se grahan ki.
He went to that holy forest.
Wo nirjan van mein gaye.
And he performed such serious yoga practices.
Aur itne gambhir yoga abhyas kiya.
First he was just eating some roots and herbs. And actually he was eating this kapita fruit, monkey fruit, fruit that monkeys like to eat.
पहले वो कपिता फल जो बंदर का फल होता है वो खाते थे.
And after that, he was thinking that's too much sense gratification.
सोचते थे अरे ये तो बहुत ज़्यादा इंद्र तृप्ति हो गया.
So he started only eating the leaves that would fall from the trees.
और उसे सूखी पत्ती जो पेड़ से गिर जाते हैं वही खाते थे.
And in his yoga practice, he advanced so much by his chanting his mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. By meditating silently, as he was chanting the mantra, he was meditating on that form of the Lord within his heart that his guru instructed him to do.
वो इस रूप पर ध्यान कर रहे थे जो उनके गुरुदेव ने बताया था हृदय में था अपने मंत्र जप कर रहे थे.
Offering articles of devotion.
और भक्ति के चीजें अर्पण कर रहे थे.
Every so many days, he only took a little bit of water.
इसके बाद कुछ दिनों में वो ये बस कुछ दिनों के बाद हर कुछ दिनों के बाद थोड़ा जल लेते
हैं. Because of his intense determination to practice these principles, after some time, every so many days, he just took one breath. Nothing else.
और फिर इसी के कारण उस स्तर पर आए कुछ दिनों में एक बार वो एक श्वास लेते
थे. Was it 12 days? After 12 days, one breath that nourished him.
बस उसी से उनका पालन हुआ.
He was a great yogi.
महान योगी.
And at a certain point, he did this asana where he stood on one toe.
और एक समय बाद ऐसे आसन किया कि बस एक वो अंगूठे पे खड़े हुए.
And his body was completely still, no movement.
On the street, it was still there, but it was just a little bit.
He was like a pillar. And he wasn't breathing at all. No movement in his body, standing on one toe in the forest. No eating, no drinking, no sleeping, no breathing. He was totally immersed as meditating on this mantra and on the beautiful form of the Lord within his heart.
वो हृदय में स्थित भगवान के रूप का ध्यान कर रहे थे और साथ साथ ये मंत्र का जप कर रहे थे.
His tapasya, his yogic trance was so powerful, it was actually affecting the whole universe.
उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि वो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रही थी.
He is only a 5-year-old child.
और वो सिर्फ एक 5 साल के बालक थे.
And ultimately, within his heart, the Lord revealed himself.
अंततः हृदय थे हृदय में भगवान को अपने आप को प्रकट करवाया.
It wasn't just a meditation anymore.
अब वो सिर्फ ध्यान ही नहीं रहा था.
विमर्जन छोड़े तो भक्ति विमोचन है ना यही था मन पर भजन थे. The Lord is within our heart. We can meditate on the concept of the Lord within our heart. But when we act, when the Lord is pleased with our sincerity, He can actually reveal Himself within our heart.
भगवान जब हमारी प्रामाणिकता से खुश हो जाते हैं तो भगवान हमको हृदय से प्रकट हो सकते हैं.
As Dhruva was standing there on one toe with one leg raised, he was having the darshan. He was seeing God. He was a spirit. spiritual ecstasy.
ध्रुव जब खड़े हुए थे तब भगवान के दर्शन कर पा रहे थे और आध्यात्मिक भाव विभोर हो गए.
The love of his heart was becoming uncontrollable, an uncontrollable experience.
हृदय के प्रेम जो है एक बहुत ही बड़ा अनुभव हो रहा था जो वश में ही किया जा सकता था.
Suddenly that eternal form of the Lord in his heart disappeared. There was nothing.
अचानक हृदय से जो रूप प्रकट हो गया कुछ भी नहीं रहा.
His eyes were closed and it was only darkness.
और उनकी आंखें बंद थी और अंधकार में थी.
So startled by the loss of the form of his meditation, then he opened his eyes.
उतने आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने अपनी आंखें खोल दी.
And he saw that exact same form of Lord Vishnu that was within him was now personally standing right in front of his eyes.
उन्होंने क्या देखा कि वह रूप जो पहले हृदय में देख रहे थे वैसा ही विष्णु का रूप साक्षात उनके सामने उपस्थित.
ध्रुव surrendered his heart before the Lord.
बालक ध्रुव ने अपना हृदय भगवान को समर्पित कर दिया.
He folded his palms and wanted to offer prayers of gratitude and love.
अपने हाथ को जोड़कर प्रेम से कृतज्ञता के प्रार्थना स्तुति अर्पण करना चाहते.
But he was only 5 years old. He never even went to school. He didn't know any prayers.
वो तो 5 साल के बालक थे पाठशाला भी नहीं गए थे उनको कुछ पता ही नहीं था.
But if we have sincere desire, Krishna explains in Gita, Ananyas chintayanto mam yejana paripashyate. If you are just sincere in your devotion, I will preserve whatever little you have and I will give you whatever you lack.
गीता में भगवान बताते हैं अगर आप प्रमाणित हैं तो भगवान वो चीज देते हैं जो आपके पास नहीं है और जो है उसकी रक्षा भी वही करते हैं.
That's how this temple was built here.
इस तरह से ये मंदिर का निर्माण हुआ है यहाँ पर.
All of you devotees had a sincere desire to make a nice temple so that you could all gather and invite so many thousands of people to come.
आप सबकी इच्छा थी कि एक मंदिर का निर्माण करें जिससे आप हजारों लोगों को बुला सकें साथ.
To worship, honor, and love Radharani and Krishna.
जिससे कि आप राधारानी और कृष्ण की पूजा कर सकें.
And you had a little.
आपके पास थोड़ा सा ही था.
And you lacked so much.
आपकी कमियां बहुत सारी थी.
You lacked so many lacks.
आपके पास कई लाखों की कमी थी.
कृष्ण प्रदान.
लेकिन कृष्ण ने प्रदान किया.
So the Vishnu wanted to say something to show his gratitude, but he didn't know what to say.
बालक ध्रुव जो है अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कुछ बोलना चाहते थे लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे. भगवान नारायण हृदय को जानते
थे
और अपना शंख लिया और ध्रुव के सिर को स्पर्श
किया. Not only with the realizations of the essence of all scriptures, the realizations of all the great saints and acharyas of all time.
उन्हें ध्रुव आशीर्वाद दिया न केवल शास्त्रों के साक्षात्कार हर समय के भक्त और ऋषियों के साक्षात्कार जो उनके समझ थी.
He also gave him the power to instantly compose magnificent poetic Sanskrit verses in order to express those realizations.
और उनको बुद्धि दी कि सुंदर संस्कृत शब्दों की रचना करे जिससे अपने वो साक्षात्कार को प्रकट कर सके. और वो पाठशाला भी नहीं गए.
The kamsha of the Lord makes beautiful sounds when the Lord blows.
जब भगवान का शंख है जब भगवान बजाते हैं तो बहुत सुंदर ध्वनि पैदा होती
है
सारे अमंगल को दूर करते
हैं. और
भगवान विष्णु के एक हाथ में शंख रहता है.
But here the Lord didn't even blow it. he just touched truth with it. And truth
was able to he was empowered to make sounds that would remove all inauspiciousness and invoke auspiciousness for the rest of time in all of our hearts.
और भगवान ने यहाँ वचन को बजाया भी नहीं, सिर्फ स्पर्श किया और सब स्पर्श करने के फल हो कि ध्रुव महाराज ऐसी प्रार्थना कर सके जो आने वाले सब पीढ़ियों के लिए सारे हृदय के अमंगल को दूर कर सके.
And in those prayers which we are reading today, we find the treasure of Dhruva's heart.
और इन प्रार्थनाओं में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें खजाना है ध्रुव के हृदय का.
After humbling himself and glorifying the Supreme for his mercy,
अपने आप को नम्र बनते हुए भगवान को कृपा के लिए धन्यवाद देते हुए,
Dhruva is speaking in today's verse.
जो आज के श्लोक में कह रहे हैं,
that the ultimate benediction is not in what you give. It's in you.
सबसे बड़ा आशीर्वाद वो नहीं है जो आप देंगे, सबसे बड़ा आशीर्वाद है आप.
He says, serving you, the opportunity to serve you is better than becoming a king and lording it over an entire kingdom.
आपकी सेवा करने का जो अवसर है वो किसी राजा बनने से ज्यादा सी.
There's a famous saying in English.
अंग्रेजी में कहावत है,
It's better to serve in heaven than to rule over and reign in hell.
ज्यादा अच्छा है कि स्वर्ग में सेवा करना बजाय इसके कि नरक में राजा बनना.
It's better to serve the Supreme Lord with humble devotion, Dhruva Maharaj is saying, than even lord it over an incredible kingdom.
Dhruva Maharaj बोल रहे हैं कि भगवान की सेवा करना ज्यादा अच्छा की वजह से कि बहुत सारे विशाल राज्य को प्राप्त करना.
Dhruva Maharaj is kind of ashamed of himself.
Dhruva Maharaj अपने आप से लज्जित महसूस कर रहे हैं.
I came here wanting all this material power and wealth from you.
मैं आया आपके पास ये भौतिक संपत्ति और सुख प्राप्त करने के लिए.
But now my heart is completely purified of all these selfish desires.
लेकिन अभी मेरा हृदय सारे स्वार्थ की इच्छाओं से मुक्त हो गया है.
I came looking for broken pieces of glass in the form of power and fame and enjoyment of this world.
मैं आया था कांच के टुकड़े की खोज में इस दुनिया की शक्ति और महिमा और धन के प्राप्ति के लिए.
But you have given me the rarest diamond in the form of loving devotional service to you.
आपने मुझे दुर्लभ हीरा दिया है जो आपके प्रति प्रेममय भक्ति का अवसर दिया.
In this way you protected me.
इस तरह से आपने मेरी रक्षा की.
In this verse, Dhruva Maharaj's definition of protection is so very, very
यहाँ पर ध्रुव महाराज की सुरक्षा का अर्थ है वो हमारे लिए सबके लिए बहुत आवश्यक है. इसको समझाते हैं
that the protection was not that he sustained Dhruva's life in that dangerous place.
सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ध्रुव महाराज की खतरनाक स्थिति में भगवान ने रक्षा की.
Protection was Dhruva was diverted from the path of pure unalloyed love and devotion, and the Lord brought him back.
रुपये ये थे कि ध्रुव महाराज शुद्ध भक्ति के मार्ग से विफल हो गए थे और भगवान को वापस लेकर आए.
One should simply pray to the Lord to be constantly engaged in his transcendental loving service.
श्री प्रभुपाद ये लिखते हैं कि व्यक्ति को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं सतत उनकी प्रेममय सेवा में लगा रहूं.
Dhruva Maharaj, being cognizant of his own desire for material benefit,
ध्रुव महाराज जानते थे कि उनकी स्वयं के भौतिक लाभ की इच्छा है.
protection from the Lord so that he might not be misled or deviated from the path of devotional service by material desires.
वो चाहते थे कि भगवान मेरी रक्षा करे जिससे कि मैं भौतिक इच्छाओं के कारण भक्ति के मार्ग से विपत्त नहीं हो जाऊं.
Dhruva is praying to the Lord, don't let me be diverted by wanting any of these things anymore. All I want to do is to serve you.
भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं इन चीजों के कारण अलग नहीं हो जाऊं, बस मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं.
Just like a loving cow protects her helpless little calf.
जैसे प्रेमी गाय जो है अपने छोटे बछड़े की सुरक्षा करती है.
Please protect me from lust and envy and anger and greed and arrogance and illusion. Please protect me from wanting anything but to serve and to love you and to be an instrument of your compassion within this world.
आपके कार्य के लिए दुनिया में एक औजार बनने की.
Maharaj is saying this prayer, the word purushartha. Purushartha means a goal in life.
Purushartha का मतलब होता है जीवन का एक लक्ष्य.
Those who turn to God generally approach Him for four purushartas.
जो लोग भगवान की ओर जाते हैं वो चार पुरुषार्थ के लिए जाते हैं.
For economic development.
एक तो आर्थिक विकास के लिए.
For sense gratification,
इंद्र तृप्ति के लिए,
for religiosity,
धर्म के लिए,
and when all of these things ultimately frustrate one, for liberation.
और जब इन चीजों से तब दुखी हो जाते हैं, तब फिर मुक्ति के लिए.
So Dhruva Maharaj was given by the Lord the purushartha shiromani, the crest jewel of all goals of life.
भगवान ने ध्रुव महाराज को पुरुषार्थ शिरोमणि दिया जो सारे लक्ष्यों से सबसे ऊंचा है.
The supreme purushartha, the ultimate goal for everyone, whatever our occupation may be.
सबसे ऊंचा पुरुषार्थ हम सबके लिए चाहे हमारा कोई भी व्यवसाय क्यों ना हो.
Is to realize how to love God.
वो है ये जानना भगवान से कैसे प्रेम किया जाए.
But in order for that love of God to satisfy our heart completely,
उस भगवान प्रेम को अपूर्ण संतुष्ट करने के लिए,
it must be authentic aprityata, वो unmotivated by any selfish desires,
उसमें कोई भी स्वार्थ की इच्छा नहीं होनी चाहिए.
Without ego,
अहंकार नहीं होना चाहिए.
And not interrupted by any situation that may come in this world.
और किसी भी स्थिति से जब रुकना नहीं चाहिए.
We don't have much control over the environment around us.
आसपास के जो वातावरण है उसके ऊपर हमारी ज्यादा वश करने की शक्ति नहीं है.
Whoever we are,
चाहे हम कोई भी क्यों ना हो.
But there were simple people living in a straw hut, or whether we're multi-billionaires or heads of state. There are so many things that are just beyond our control.
चाहे हम कुटिया में रह रहे हों या हम करोड़पति हों, अब कई चीजें हैं जो हमारे वश में नहीं होती.
We have some beautiful people, wonderful people who have come from Japan.
हमारे साथ
with us today.
हमारे साथ एक बहुत सुंदर भक्त आए हैं जो जापान से आए हैं.
गोविंद
जो है बहुत सारे भक्तों को वहां से लेकर आए हैं.
गोविंद
गोविंद जो है वो गोविंद के दर्शन के लिए
आए. गोविंद इज वेरी हैप्पी टू सी
गोविंद. गोविंद गोविंद को देख कर बहुत पसंद है.
बोथ वेज अमर गोविंद.
आपको तो इतनी मालूम होगा कि कितना बड़ा भूकंप और सुनामी वेव्स आए जो कि जापान में
Thousands of people have lost their lives. Hundreds of thousands, millions are either homeless or very deeply affected by this. Japan is one of the most scientifically, technologically, intellectually advanced countries in the world. Economically, for so many years, the Japanese currency is very foundational for the whole world's economy. Extremely powerful country. Even in America, some of the most famous companies, in Hollywood, in New York City, the most famous buildings are owned by people in Japan.
और अमेरिका में जो बड़े-बड़े इमारतें हैं कई जो कि वो जापान के लोगों के द्वारा वशीन की गई हैं।
It's incredible that little island has such power over the whole planet.
ये बड़ा विचित्र है कि छोटे से द्वीप का पूरे धरती के ऊपर इतना प्रभाव है।
Due to the brilliance and the determination of the people.
लोगों के दृढ़ निश्चय और बुद्धि के कारण है।
But what could anybody do when an earthquake strikes?
लेकिन जब भूकंप होता है तो कोई क्या कर सकता है?
When a massive wave comes out of the ocean.
या एक बड़ी लहर जो है सागर से आ जाती है।
Sometimes in our own life, little things happen or big things happen.
कभी-कभी हमारे जीवन में कुछ
भी beyond our control.
कभी-कभी हमारे जीवन में कोई छोटी या बड़ी घटना होती है जो हमारे वश में नहीं होती।
Whoever we are, whatever we know, whatever we have, we cannot control the environment beyond a certain degree.
हम चाहे कोई भी हो वातावरण को वश में नहीं कर सकते थोड़ी मात्रा से ज्यादा नहीं वश कर सकते
And therefore, the Bhagavad tells us, Adam Padam Yadmi Padam Yadesha. Whoever we are in this world, there is danger at this time.
भागवत ने बताया कि हम कोई भी हो हर कदम पे कोई ना कोई खतरा है
It may come in the form of an unseen little germ in you that's just making plans to kill you with a disease.
हो सकता है कि हमारे शरीर में कोई पर कीड़ा हो जो कि योजना बना रहे आपको मारने का
It may come in the form of a massive wave that's about to come out of the ocean.
और जो एक बड़ी लहर हो जो कि सागर से टकर करने वाली
From Nigri, Harpi Bhagat Rohini Tanayak Prabhu. He was one of the brahmacharis who was living here. And he was so humble and so sincere and eager to serve. He didn't want anything except to serve. He wasn't attached to getting something in return from his service. He just wanted to make Krishna and everyone happy.
वो कुछ चाहते नहीं थे सिवाय ये कि बस कृष्णा और बाकी सब भक्त संतुष्ट हो गए।
He was not a very highly educated person. He wasn't a very wealthy person materially, but he loved to serve.
वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और बहुत धनशाली भी नहीं थे बस उनको सेवा करना अच्छा लगता था
He embraced this teaching of Srimad Bhagavatam in the core of his heart.
उन्होंने श्रीमद् भागवत की शिक्षा को अपने हृदय से लगा दी
Even within the Krishna consciousness movement, he wasn't a senior person. He wasn't a big manager. He was slipping in his little ashram.
हमें अंदरों में बड़े कोई मैनेजर नहीं थे मतलब छोटे से आश्रम में रहते
And it just
before anybody even knew it was there,
it became a cancer that was so powerful there was nothing anyone could do about it.
और अचानक ये बीमारी आ गई और वो ऐसे फैल गई इसके बारे में कुछ किया ही नहीं जा सकता था.
Quickly it ravaged his body.
और धीरे धीरे पूरे शरीर को नष्ट करने लगी.
Now, historically, I know of some of the wealthiest, most powerful people of India get that cancer and there's nothing they could do about it. They suffer and die.
ऐतिहासिक रूप से मैंने देखा है कि भारत के अमीर व्यक्तियों को ऐसी बीमारी हुई है उसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता, बस दुखी होकर अंत में मर जाते
हैं.
और एक बिल्कुल सरल ब्रह्मचारी है जो कि सादा चावल खा रहे हैं उनको उसी प्रकार का कैंसर हो. वातावरण के बारे में कुछ नहीं कर सकते.
But he was grateful because he was so grateful that he had the holy name.
वो कृतज्ञ थे क्योंकि उनके पास पवित्र नाम था.
He had Krishna.
उनके पास कृष्ण था.
And at Bhaktivedanta Hospital, as he was being treated, emaciated, thin, always smiling.
Bhaktivedanta Hospital में बहुत बातें कमजोर भी हो गए तो हमेशा मुस्कुरा रहे.
Never complaining.
कभी कोई शिकायत नहीं.
Positive. Hare Krishna, happy.
बस मेरे साथ कृष्ण है इसलिए मैं सुखी.
Just wanted to make other people happy.
और दूसरों को सुखी.
Because he had inner wealth.
उनके अंदर की संपत्ति.
Nothing, even death, can take away that inner wealth.
और मृत्यु भी अंदर की संपत्ति को नहीं छीन सकती.
So let me give you an
example. एक जीवन उदाहरण है.
He only had one wish in his life.
उनके जीवन में एकमात्र इच्छा थी.
He wanted to see Radha Govinda in their new temple here in Nigri.
वो राधा गोविंद को इस नए मंदिर में देखना चाहते थे निगरी में.
Not for himself.
अपने आप के लिए नहीं.
He gave his life for this. He wanted to just see how Govinda Jayamik and Radha Rani are going to bestow their mercy on the world.
देखना चाहते थे कैसे राधा और गोविंद देव पूरी दुनिया को अपनी कृपा यहाँ से प्रदान करेंगे.
He wanted to appreciate and see the joy of all the devotees from Nigri who worked so hard to build this temple. He wanted to see that joy.
वो तब नगरी के भक्तों का आनंद देखना चाहते थे जिन्होंने मंदिर बनाने में सहायता की.
And some of my god brothers and god sisters who came to Bhaktivedanta Hospital, they were amazed to see him.
और मेरे कुछ गुरु भाई और गुरु बहन जो उनके हॉस्पिटल में उनको मिलने के लिए आए वो भी आश्चर्यचकित हो गए.
My god sister Yamuna Devi, she came during his last days.
उनके आखिरी दिनों में महाराज की गुरु बहन यमुना देवी उनसे मिलने के लिए आए.
She was one of the senior most advanced Vaishnavis in the entire world.
पूरे दुनिया में सबसे एडवांस वैष्णवी में से एक हैं पूरे दुनिया में.
She was a very personal associate of Srila Prabhupada from 1966.
1966 से वो श्रीला प्रभुपाद जी के पार्षद रहे.
And from 1966 to the present day, she never stopped serving him with love and devotion.
और तभी से लेकर अभी तक कभी उन्होंने प्रभुपाद जी की सेवा को नहीं त्यागा.
ISKCON didn't even exist, she was serving Srila Prabhupada.
जब ISKCON की स्थापना भी नहीं हुई तभी से प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं.
And Prabhupada said about her that she entertained bhava, love of God.
और प्रभुपाद ने उनके बारे में कहा है कि उन्होंने भाव स्तर प्राप्त कर लिया है भगवत प्रेम.
वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही है. Very, very deep realizations, incredible wisdom, and a lot of experience.
बहुत अनुभव है और बहुत गहरी भक्ति है.
गोविंद प्रभु इस गोविंद प्रभु सो मेनी गोविंद इज अराउंड हियर.
यहां पर बहुत सारे गोविंद हैं. कभी इस वाले गोविंद प्रभु के बारे में
एंड आल्सो हियर कृष्णानंद प्रभु.